चित्तमानस शांत हूँ, इनके गुणों के ध्यान में अर्धमान महान पूर्व गुरुदेव श्री का प्रवचन कल अपन ने कोटेशन रूप में दिया था। इस समय सार की जो 278 प्रगुण सिंह गाथा चल रही है उसमें जो कलश आया है 176 में उस पर चर्चा चल रही है, तो वहीं से अपन बात आगे बढ़ाते हैं। कल बात अधूरी छूट गई थी और शुरू शुरू में अपन ने उसे मंथन को स्पष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अपन उतनी गहराई में नहीं रह पाए नए श्रोताओं के निमित्त से। अपन फिर वहीं पर पहुंचते हैं, पेज नंबर 72 के नीचे की 3 पंक्तियां हैं, वहां से पढ़ते हैं। थोड़ा गंभीरता से इसको समझने की कोशिश करना। एक कूज गुरुदेव श्री का कोटेशन है। मैंने कल कहा था कि इसका अर्थ है गुरुदेव के सहयोग के बिना अपन नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि कम से कम इसका अर्थ समझने के लिए उतनी श्रद्धा चाहिए जितनी आपकी पूज्य गुरुदेव श्री में है। देखो कहते हैं, निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए यहां यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद घन प्रभु निमित्त कारण के अभाव में अकेला स्वयं रागदेश रूप प्रणमन नहीं करता, किंतु आत्मा जब अशुद्ध उपादान से स्वयं राग रूप प्रणमता है तब कर्म का राग रूप उदय नियम से निमित्त होता है। बस इसी कारण यह कहा है कि आत्मा परद्रव्य के द्वारा रागादि रूप प्रणमता है। अब थोड़ी इसमें गहराई में जाके देखें तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि रागादि रूप जो आत्मा प्रणमता होता है उसमें परद्रव्य का कितना सहयोग है और उस सहयोग का कितना महत्व है, ये बात समझाने के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। पहले ही कहते हैं निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए ये बात कही जा रही है। हम निमित्त को जहां भी निमित्त की दृष्टि से कथन होता है तो उसको कर्ता मान लेते हैं, जबकि उस कार्य के होने में उसका रंच मात्र भी कर्तृत्व तो नहीं है। लेकिन भाषा ऐसा होती है उससे ऐसा हुआ है ना। देखो गुरु के निमित्त के बिना कुछ नहीं होता ऐसा अपन बोलते हैं, तो अपने गुरु की महिमा आती है और ख्याल में ये बात आती है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, गौतम स्वामी के गुरु कौन थे? गौतम स्वामी समझ गए, पहले गणधर देव थे, उनके गुरु कौन थे? सोचो अपने मन में जवाब दे लेना कि लोग कहते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुरु भगवान महावीर के वो पहले नंबर के शिष्य थे, इतने महत्वपूर्ण कि सारे जनता बैठी रही और उनने उपदेश नहीं दिया, वो इंतजार करते रहे और जब वे आए तब उनने उपदेश देना शुरू किया, है ना। और इस बात की महिमा आप इस बात से समझो कि यहां प्रवचन का समय हो जाए और आप सब लोग यहां बिल्कुल शांति से प्रवचन सुनने के लिए बैठे हों और हम प्रवचन करने के लिए तैयार बैठे हों फिर भी चुप, और पूछें कि भाई क्यों 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 भाई शुरू करो ना कि वो आ रहे हैं ना, उन्हें आ जाने दो फिर करते हैं। तो आप कौन है ऐसा आदमी, क्यों किसी आदमी का हम 5 मिनट इंतजार कर लें तो आपके अंदर क्यों चले तो कुतूहल जगता है कि वो आदमी कौन है कि जिसके लिए प्रवचन रुका हुआ है, और फिर वो कुतूहल क्रोध में पलटने लगता है कि हम बेवकूफ हैं। जो 10 मिनट से बैठे हैं, अब कुछ गणित के विशेषज्ञ होते हैं, वो हमें समझाने लगते हैं कि ये 1000 आदमी 10 मिनट से बैठा, आप जानते हैं इनका 10000 मिनट आपने बर्बाद कर दिए। एक आदमी का 10 मिनट हुए ना, क्यों 1000 आदमी का 10000 मिनट हो गए ना बर्बाद, आपको समय की कोई कीमत ही नहीं है। और एक एक आदमी उसमें एक एक समय की मिनट की उसकी कितनी कीमत है, वो 1 घंटा ये तुम्हारा प्रवचन है इसके लिए आया है, पर वो कहीं दूसरी जगह ज्यादा तो 1 घंटे में 10-20 हजार कमाता, आने लगता है कितने मिनट तुमने बर्बाद कर दिए। भगवान महावीर ने क्यों स्वधर्म इंद्र जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के 66 दिन, और रोजाना दिन में कितने 7 घंटा और 12 मिनट, कितने लगभग कितने कितना समय बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो एक आदमी नहीं आया था जिसे हम प्रथम से सोने का अधिकार प्रदान करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण होगा और लोगों को कि अंदर से कुछ विरोध भाव तो आया होगा, बाहर से तो कर नहीं सकते हैं। तीर्थंकर के समुसरण में एक तो उनका इतना पुण्य प्रताप होता है कि किसी के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, और दूसरे वज्र का धारी इंद्र जैसा कठोर व्यवस्थापक होता है कि किसी ने गड़बड़ करी ना तो फिर उसकी खैर नहीं है। कौन बोले मन के अंदर तो बोल सकता है ना, थे कोई ऐसे वहां उनकी सभा में ऐसे थे मक्खली गोसाल जिन्हें नियत बात चलाया, जिन्हें वो कौन सा मत चला गोसालक मत है गोसलिया गोसली में ऐसे बहुत लोग थे कि हम बैठे हैं इतने पुराने दीक्षित और बोल नहीं रहे साहब, और वो कट्टर विरोधी कल तक गालियां देता था और वो आया तो इनने बोलना शुरू किया, क्यों उनको पहला नंबर मिला किनकर मैंने शिष्यों में भगवान महावीर के में। तो अब मैं ऐसा पूछ लेता हूं कि महावीर भगवान का पहला शिष्य कौन था, गौतम ग्रंथ। अब मैं उलट के पूछता हूं कि गौतम ग्रंथर का गुरु कौन था, पहला दूसरा नहीं, क्यों इसमें क्या है, क्लियर है ना कि महावीर थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गणधर तो वे तब बने जब उसके पहले उनने द्वादशांग के पाठी हो गए, मन परे ज्ञान के धारी हो गए, उसके पहले तो भगवान की दिव्यधनी उनने सुनी ही नहीं क्योंकि खिरिए ही नहीं और दर्शन भी नहीं किए, महावीर उनके गुरु कैसे हो गए। और आप बताओ पत्थर का मानस तुमने देखा, पत्थर का भी कहां था वो तो विक्रिया से बनाया गया था, वो पत्थर भी नकली था। पत्थर तो 1000-2000 वर्ष तक रहता है कायम, वो तो अभी 5-6 घंटे बाद कितना 6 घड़ी बाद बिल्कुल साफ हो जाने वाला है, विघटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है बिल्कुल, और ऐसा विघटित होता है कि वहां की उसकी धूल भी नहीं मिलती। बस मानव आश्रम को देखते ही क्यों और अंतर्मुख हुए, उन्हें सम्मत दर्शन हो गया, उन्होंने वहीं दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ गए, द्वादश अंग के पाठी हो गए और फिर मन पर ज्ञान हो गया। द्वादश अंग के पाठी होने के लिए किसी क्लास में पढ़ना नहीं पड़ता है और मन पर ज्ञान के लिए भी किसी क्लास में पढ़ना नहीं पड़ता है। और एक शब्द बोले नहीं, देखे नहीं, वे गुरु कैसे हो गए? तो गुरु तो मानने की बात है भाई साहब, उनने मान लिया। किसने? गौतम स्वामी ने कहा मेरे ये गुरु हैं। और महावीर ने उन्हें शिष्य माना क्या नहीं माना? महावीर को क्या मतलब है किससे कौन में क्या कर रहा है? वे तो परम पूर्ण वितरागी हो गए थे ना। पूज्य गुरुदेव श्री जिस संप्रदाय से आए थे वहां ऐसी बहुत बातें चलती थी कि गौतम स्वामी उन्हें ऐसा किया, उन पर ऐसी कृपा करी और उनको ऐसा कि तो गुरुदेव जी ने बहुत बहुत लिखा है इन किताबों में, इन्हीं इन्हीं के प्रवचनों में। मैंने तो ज्यादा उसे कोट नहीं किया जानबूझकर, उन्हें जरूरत थी, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बहुत चारों तरफ इनके प्रवचनों के सितंबर बैठे रहते थे और मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। ख्याल में कि भगवान महावीर के समोषण में ऐसा कोई प्रश्न करता हो, महावीर के मन में ऐसा विकल्प आया हो कि वो गौतम आ जाए फिर मैं प्रवचन करूंगा, ये सोच सोच के प्रवचन करते थे, ऐसा है ही नहीं। अरे उन्हें तो प्रवचन करने की इच्छा ही नहीं थी, उनने तो बुद्धिपूर्वक प्रवचन किया ही नहीं। उनकी तो दिव्य ध्वनि खिली, वो भी मुंह से नहीं, होंठ तब भी नहीं हिले थे उनके, कंठ से कुछ नहीं निकला था। ओम ध्वनि जो निकली थी वो सर्वांग से निकली थी। ये सब गुरुदेव श्री ने जो लिखा है और मैंने पढ़ा है इन 10-20 दिनों के बीच में, तो उसी का सार बोल रहा हूं। ऐसा होता ही नहीं, वे पूर्ण वितरागी हो गए थे, उन्हें कोई गौतम बौद्ध से कोई राजभाग था ही नहीं, रंज मात्र भी नहीं, और ऐसा विकल्प भी नहीं था। और वाणी तो जब खिली अपने कारण से अपने स्वकाल में ही खिली, वो तो श्रावण की जो भी प्रतिपदा है ना उसके दिन ही खिलने वाली थी, पहले खिलने का उसका कोई बात ही नहीं थी। तुम विकल्प कुछ भी करते रहो, तुम्हारे करने से क्या होता है? जो हमने सारा महावीर के माथे मर दिया, जब हम बैठे हैं तो वे बोल नहीं रहे हैं और वे आगे से फटाफट बोलने लग गए, ऐसा कुछ वहां था ही नहीं। जो भी मक्खली गोसाल वगैरह जो भी हैं और जिनको विरोध हुआ, वे समझे ही नहीं कि महावीर क्या हो गए हैं। महावीर पूर्ण वितरागी हो गए, ये पहचाने नहीं पाए वे लोग। उनकी वितरागता का जो क्या स्वरूप है वो उनके ख्याल में ही नहीं आया है? और हमने थोड़ा दिगंबरों में तो उन्होंने और बड़ा बड़ा करके उनने ऐसी की, उनने ऐसा की, फिर भी आया, फिर उनने ऐसा, कुछ नहीं है वहां। कोई प्रश्न वश्न करता ही नहीं है वहां, कोई प्रश्न के जवाब दिए ही नहीं जाते हैं कि 60,000 प्रश्नोत्तर होते हैं, कोई प्रश्न वश्न नहीं होते हैं। 60,000 प्रकार के प्रश्न श्रोताओं के चित्त में खड़े हो सकते हैं, होते हैं नहीं? ये तो वो शास्त्री हैं, जैसे बंदे भंग लगाते हैं ना, क्या समझ आई? वो भी भंग हैं, कुछ नहीं है। 363 मत कि तुम जैसे 363 हमने देखे, बोलते ना, 363 कोई गिनती फिनती के हैं नहीं, बताओ कौन 363 गिना? 4-5 से ज्यादा कोई गिना ही नहीं पाता। 363 वे तो कैसे है मालूम आपको? कि अज्ञान नामक मिथ्यात्व कितने प्रकार का हो सकता है? तो उन्होंने कहा इसका गुणा उसमें करो, उसका गुणा उसमें करो, कितने प्रकार के अज्ञानी, एक बनाने एकांतवादी, ऐसे गुजोर जाड़ के भी विकल्प इतने हो सकते हैं, वो कल्पना लोक की बातें हैं, समझ रहे हैं? अब वो सब ऐसा हो गया, प्रमाण योग में लिखा है, हमारे गले में हो गया, जैसे होते हैं सब 363 थे उनके सामने खड़े थे बिल्कुल नंबर से 363 विरोध करने के लिए। अरे वो उनके श्रोताओं में ही 363 के विकल्प वाले हो सकते हैं और उन सब का समाधान हो जाता है, उसका मतलब है कि वो 60,000 प्रश्न हुए और उनके उत्तर उनने दिए और कोई प्रश्न उनके उसमें बाकी नहीं रहता है। ख्याल में है ना उनकी बात है, बस इतनी सी बात है। और ये जो मैंने आप बताया ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का ही सार है और उन्होंने वो श्वेतांबरों के यहां जो जो बातें कही जाती हैं वो सब एक एक कहीं कि कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुदानी जी पढ़े होंगे आपने ऐसे बहुत प्रकरण। जब मैंने टोडामल जी पर रिसर्च की थी तो जो 7वां अध्याय पर बताया कि व्यवहारावासी, निश्चयावासी, उभयावासी, सम्यक के सन्मुख, तो 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो मैं हमारे प्रोफेसर पूछते थे कि कौन कहां रहते हैं ये लोग निश्चयावासी किस एरिया में है, कौन से गांव में है, उनके गुरु का नाम क्या है, निश्चयावासी कौन है। तो मेरे से कहते थे, मैं उन्हें समझा कि साहब ये कोई नहीं है, ये तो ऐसे से हो सकते हैं। देखो मिस्टर भारेल, तुम मेरे शिष्य हो, गुरु नहीं, तुम मुझे प्रवचन मत दो। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, ये काल्पनिक है, ऐसे कोई गांव नहीं बसे हैं व्यवहारावासियों के, निश्चयावासियों के, उभयावासियों के, ये तो हम तुम इनमें ही ऐसे हो सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, आप मेरे से गांव पूछ रहे थे, मैं कौन सा गांव बताऊं, कहां रहते हैं निश्चयावासी, कहां रहते हैं व्यवहारावासी, ये सब भेद इसी प्रकार के भेद हैं। ख्याल नहीं ना, टोडरमल जी ने 13 बंदी 20 बंदी ऐसे भेद तो नहीं गिनाए, क्यों उनमें क्यों ऐसा नहीं है, समझिए ना। तो वो ऐसी ही बात है, गौतम स्वामी को उनका कोई गुरु नहीं था, पूरब भ्रम में कभी देशना पाई होगी, जब हो सकता है जाप स्मरण हो गया हो, आप समझे ना, लेकिन अभी वर्तमान में तो उनकी दिव्यवाणी खिरी नहीं, उन्हें सुनी ही नहीं थी, और पहले तक तो विरोधी थे इस भ्रम में, क्यों, लेकिन अब क्या करें, इस जगत का ऐसा ही स्वरूप है कि जिसने एक अक्षर महावीर से नहीं सीखा, महावीर ने एक नहीं सिखाया, वे पहले नंबर के गुरु हो गए और गोल्ड में लिस्ट आ गए, क्यों, और जिनने सुना 30-20 वर्ष तक 30-30 वर्ष तक, अभी निकल के बाहर चले गए, अभी उनके गुरु नहीं रहे, ना उनने माना कि वे हमारे गुरु हैं और ना हम कहते हैं कि वे महावीर के शिष्य हैं। गुरुदेव यहां फरमा रहे हैं कि ये भैया वो राग किसके निमित्त से हुआ, किसने कराया, ये इसका प्रतिपादन नहीं है, ये तो जब राग भगवान आत्मा में हुआ शुद्ध उपादान से तत्समय की पर्याय की योग्यता से, तब उसमें निमित्त कौन था, कौन होता है, जो भी सामने था वो निमित्त था, ये निमित्त का ज्ञान करा रहे कि निमित्त का मतलब क्या होता है, निमित्त का ज्ञान कराने का मतलब समझे। आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग हुआ ही नहीं था, ना उसकी मृत्यु देखकर हुआ था कि आपके ही मुख से हमने पंच कल्याण को हमें सुना है और आपकी किताब में लिखा है, कि वो तो निमित्त का ज्ञान कराया है, वो तो चटकारे ले लेकर के आप सुनाते हो और लिखा है उसमें वैसे ही प्रथमान योग की ऐसी शैली है क्या, तो कैसे हुआ था, तब समय की योग्यता से हुआ था, समझिए ना, उस समय उनको पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि काल अवधि नहीं थी, उस समय ही उसी काल में उनको ऐसे वैराग का परिणाम होना था, पर उसके कारण से वे हुआ। पांच समयों में एक निमित्त भी था। अब इस निमित्त की का स्वरूप समझाता हूं, निरर्थकता बताता हूं, ऐसा नहीं बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं? इसका स्वरूप समझाता हूं कि आदिनाथ को तो नीलांजना की मौत से हो गया, और नेमिनाथ को वो पशुओं मशुओं से हो गया जो भी है, और शांतिनाथ को कि भैया हमें पता नहीं है। अरे भाई, एकाध दो ही ऐसे हैं, और बाकी तीर्थंकर तो ऐसे हैं कि आकाश में बिजली चमकती देखी और हो गया। क्यों? मैं कहता हूं कि उनने उसके पहले लाखों वर्ष की उम्र जी थी, चक्रवर्ती थे, उनने पहले कभी बिजली चमकती नहीं देखी थी। यदि बिजली चमकती देखने से वैराग होता है तो उनका तब क्यों नहीं हो गया? और हमने और आपने कभी बिजली चमकती नहीं देखी है, होता है तो हमें और आपको क्यों नहीं हो गया? क्यों? तो क्या कहना है फिर? उसे क्यों कहा? अब सामने कुछ था ही नहीं, तो निमित्त तो जो होता है सामने उसे आरोप आ जाता है। क्या अब क्या कह रहे थे? बस बैठे थे रात को, ऐसा सोच रहे थे, आधा वहां बादल गरज रहे थे, इतने में उन्हें वैराग्य हो गया। अब किसको निमित्त गए? कहां पे देख रहे थे? आकाश की तरफ। अब क्या करें? बादलों को तो कह नहीं सकते थे, बिजली को कहेंगे क्षण भंगुर तो वही है। तो पहले से एकदम अनंत भावना का संतमन करने लगे कि सब चीज क्षण भंगुर है, तो समझा कभी क्षण भंगुर बिजली चमकी थी वही होगी। बिजली पे लगा दिया। क्यों? कोई ने कहा दर्पण देख रहे थे, एक आध बाल सफेद हो गया होगा, उसे देख के हो गया होगा। क्यों? माने ये तो ऐसा ही है, उससे उसका कुछ होना नहीं है। फिर जो भी परिभाषा है ना कि जब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ जाता है उसे निमित्त कहते हैं। बस इतनी सी बात है कि वहां बादल भी तो थे, बिजली चमकने की क्यों? क्या बादल तो ऐसे ही थे, बिजली चमकी थी एक क्षण में चली गई, तो उन्होंने एकदम सोचने लगे कि सब कुछ संसार क्षणभंगुर है। कैसा कैसा क्षणभंगुर है? बिजली के समान क्षणभंग है। क्या बोलो? बारह भावना की पहली पंक्ति है,
अजाराणा छत्रपति
भावना की, जिसमें बिजली चमकने की बात है। ऐसी बताओ, मतलब जो भी बिजली चमकने की बात आई उनके दिमाग में, बस आगे उन्होंने बिजली चमकने की बात लिख दी। मतलब उसका कुछ निमित्त का कुछ उसे जाके कि डंडा मार मार के कराना पड़ता हो, ऐसा रंज मात्र भी नहीं है। बहुत से लोग बहुत से प्रश्न करते हैं कि निमित्त प्रेरक भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं। तो उन्होंने कहा प्रेरक मेरक कुछ नहीं है, जो स्वयं गमनशील होते हैं उनको प्रेरक कहते हैं, और जो स्थिर होते हैं उनको उदासीन कह देते हैं। कुछ नहीं, वे करते मरते कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ध्वजा है हवा के चलने से हुई, तो हवा चूंकि खुद दौड़ रही है तो उसे प्रेरक निमित्त कह दिया। क्यों? और वो धर्मद्रव्य है, बिल्कुल स्थिर है, इसलिए उसे उदासीन कह दिया। कोई प्रेरक नहीं है, कोई उदासीन नहीं है। पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं गते धर्मास्ति काय वत, सारे ही निमित्त जैसे गति में धर्मास्ति काय है ऐसे होते हैं। हमें कोई प्रेरणा मेरणा नहीं देता है, किसी की प्रेरणा से कोई किसी को बैराग्य नहीं होता, कुछ नहीं होता किसी की प्रेरणा से। देखो अब मैं पंक्तियां जो अपन ने पढ़ी थी ना, जिसका अर्थ मैं अभी कर रहा हूं, वे द्वारा पढ़ता हूं। निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए यहां कहा जा रहा है, माने कौन निमित्त है और किसकी प्रेरणा से हुआ था, ये बताने के लिए नहीं कि निमित्त का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि वो प्रेरणा फेरना नहीं देता है। ये बता, एक ज्ञान कराने के लिए कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद घन प्रभु निमित्त कारण के अभाव में अकेला स्वयं रागदेश रूप प्रणवन नहीं करता, किंतु आत्मा जब स्वयं अशुद्ध उपादान से स्वयं राग रूप प्रणमता है तब कर्म का राग रूप उदय नियम से निमित्त होता है। बस इसी कारण यह कहा है कि आत्मा परद्रव्य के द्वारा ही रागादि रूप प्रणमता है। तो इतनी सी बात है, उसे तुम कर्ता मत समझना, है ना। पर्याय में विकार स्वद्रव्य के निमित्त से नहीं होता। स्वद्रव्य तो निमित्त, स्वद्रव्य तो उपादान है, उसे निमित्त कैसे कहें, है ना। फिर उपादान कौन रहेगा। लेकिन इसी जनमानी में निमित्त को दो प्रकार से कहा है, स्वनिमित्तक और परनिमित्तक। फूलचंद जी में और बंशीधर जी व्याकरणाचार्य में यही तो नोक झोंक हो रही थी। तुम दो निमित्त दो प्रकार के मानते हो कि नहीं, ये स्वनिमित्तक और ये परनिमित्तक। स्वनिमित्तक माने अपना भगवान ही आत्मा निमित्त है। अरे उसका अर्थ ये है कि कोई निमित्त नहीं है, निमित्त तो पर होता है। उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर हो तो स्वा तो हो ही नहीं सकता। तो जहां बाहर में कोई निमित्त नहीं हुआ तो उसे हम स्वनिमित्तक कह देते हैं। और अपन कहते हैं लोग में ये किसने कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं, अपने आप हो गया, क्या कहते, बड़े बड़े प्राण निकल गए। आप सुने तो वो इसको स्वनिमित्तक कहते हैं। कहते हैं कोई स्व तो उपादान होता है, स्व का कार्य का निमित्त। क्यों हमें तुम्हें है कि दो चीजें चाहिए, तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक निमित्त और उपादान, एक निमित्त और उपादान। हम बता नहीं पाए तो हमने कह दी वो वही निमित्त तो वही उपादान। चलो अरे ना देखो, पर्याय में विकार स्वद्रव्य के निमित्त से नहीं होता, किंतु परद्रव्य के निमित्त से होता है। इसलिए परद्रव्य के द्वारा ही रागादि रूप प्रणमता है, ऐसा व्यवहार से निमित्त की मुख्यता से की अपेक्षा से कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो उस समय जीव को रागादि रूप अवस्था होने का स्वयं का ही जन्म क्षण है। संसार में जो जन्म क्षण की बात आई ना, वो लिया है उन्होंने कि उस राग रूप पर्याय का जन्म इसी काल में होने वाला था। ऐसी काल लब्धि और तत्समय की योग्यता, ये दोनों उसमें अपने आप ही विद्यमान थे। परद्रव्य तो फिर भी निमित्त मात्र ही है, पर उसे रागादि रूप प्रणमाया नहीं है, उसने प्रणमाया नहीं है, निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। भाई करते कल बताया था उदाहरण अपने लास्ट लास्ट में, कभी तुमने वो नाच रही है, उसने बहुत लुभाया, उसने आंख मारी थी, उसने हाथ से इशारा किया था, इसने फंसा लिया। अरे उसने कुछ नहीं किया, अब वो तो नहीं आंख मार रही है, वो चित्र है? वो तो कुछ नहीं कर रहा है ना, कि नहीं नहीं साहब अब वो भी है, वो ऐसे ऐसा तो सही ऐसा हाथ मार लटक रहे थे। अरे काय को माथा मारते हो ऐसा सही, तो तेरे उपादान में पहले खराबी भई जब इस दीवार पे लगा है, नहीं तो दीवार पे लगता ही नहीं। आप समझे ना, क्यों निमित्त पर दोषारोपण करने की जो हमारी आदत है वो सही नहीं है। गुरुदेव कहते इसका ज्ञान कराने के लिए ये बात कही है कि परसंग एव, पर ने किया ऐसा कहां लिखा, परसंग पर का संग हुआ वो ही निमित्त है। और वो परसंग हम ही कहते देखे तो किसने किया, कि दूसरे ने किया कि तूने किया, वो जबरदस्ती से आ गए कि इसने जबरदस्ती की, बोलते ना। अब बोलते हैं जैसे मुनिराजों के लिए आकाश से उतर के आ गए थे समझाने, तो वो मुनिराज शेर को सम्मान हो गया, इससे यदि हम गलत काम माने तो सारी गलती मुनिराजों की होगी ना। जब तो अच्छा काम माने तो सारा भला ही मुनिराजों के माथे पर चली गई। क्यों, अरे उसके उपादान की तैयारी थी, तो निमित्त के बिना किसी का काम नहीं रुकता, ये निकालो इसमें से। निमित्त जुटाने नहीं पड़ते, इस प्रजन सार में तो ऐसा लिखा है कि मेरी समझ में नहीं आता कि अज्ञानी जीव निमित्तों को जुटाने के लिए इतना व्यग्र क्यों हो रहा है। इतने बड़े बड़े काम दुनिया में हुए हैं तो किस किस ने उनके निमित्त जुटाए हैं बोलो। अपन पिछले भव में से मर के और इस भव में पैदा हुए हैं तो माँ बाप के निमित्त के बिना तो नहीं हो सकते ना? क्यों? और किसी घर में ही होंगे, अब आजकल किसी अस्पताल में ही होंगे, और कोई डॉक्टर ही होगा, कोई दाई होगी, लेकिन इसके लिए तुमने क्या किया था? वो पिछले भव में जब तुम्हें यहां आना था, अभी तुम्हें यहां से कहीं जाना हो, क्यों मोटानी दिल्ली में जाना हो तो कौन सा होटल विपुल कर देना, वो फलाना होटल कर देना, फाइव स्टार कर देना, ये कर देना, फोन करके गाड़ी की व्यवस्था कर देना, क्यों है? और भोजन की कर देना, उसमें वो दही मीठा दही होना चाहिए, आज सब व्यवस्था आप करते हो। लेकिन जब आप आए थे अपनी माँ के पेट में, क्यों, तब आपने क्या व्यवस्था की थी? क्यों कि मैं देख तो आऊं घर कैसा है, अस्पताल कैसा है, वो डॉक्टर कैसा है, ये भी माँ बाप कैसे हैं, बोलो। किसी ने कुछ किया था? और इतना बड़ा जगत ऐसे ही चल रहा है बिना किसी व्यवस्था के। और आज तक जिसको मनुष्य पर्याय में पैदा होना था उसकी उपादान गत योग्यता आ गई थी, उसको किसी को ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। आजकल तो हम बहुत सतर्क हो गए एक भव के जरा से क्षण काम के लिए। इसी संदर्भ में मैं जैसा कहता हूं कि हम यहां से बंबई जाते हैं ना, तो एक घंटे डेढ़ घंटे में पहुंच जाते हैं, तो भी घर से नाश्ता बांध के ले जाते हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं इस नाश्ता बांध, क्या करोगे नाश्ता, कहां करोगे नाश्ता, अभी खाकर पीकर चाय पी के निकल रहे हैं और खाने के टाइम के पहले वहां पहुंच जाने दो घंटे पहले, तुम समझते तो ही नहीं। कभी लेट हो जाते तो, कभी फ्लाइट लेट हो गई तो, कैंसिल हो गई तो, ना क्या अभी 25 दफे तो हुई नहीं, लेकिन 25 दफे नहीं हुई तो 26वीं दफे नहीं होगी, हो भी गई थी कई दफे, क्यों समझियो। ऐसी बिल्कुल कल्पना की उड़ान भर भर के हम नाश्ता बांध के ले जाते हैं कि तुम्हें क्या बिगड़ता है, चला जाएगा वहां बच्चे खा लेंगे, नहीं तुम मत खाना, तुम गर्म रोटी खाना जाकर, क्यों होता क्या नहीं होता है। अब अपन ये मनुष्य पर्याय छोड़ के और अगले भव में अनंत काल की यात्रा पर निकल रहे हैं, क्यों? अब ये लौट के संयोग मिलने वाले नहीं है, एक साथ सब संयोग छूटेंगे नहीं, तो उसके इंतजाम के लिए कुछ सोचा? जाते जाते बेटे का इंतजाम, बहू का इंतजाम, बेटी का इंतजाम, उसका इंतजाम, इसको इतना दे देना, उसको इतना ले लेना, इसको ऐसा कर देना, उसको ये कर देना, वो मुझे कुछ पैसा उसके पास पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं, कुछ मैंने उधर जमीन में गाड़ रखे थे, ये सारा मरते मरते दम तक क्यों यही का हिसाब किताब लगाता रहता है। और ऐसे बीच में गला रुन जाता है और लड़के कहते रहे पापा ने पूरा बता नहीं पाया, क्या नहीं बता पाया, त्रिकाली ध्रुव। माने इस भव की अपनी नहीं दूसरों की व्यवस्था के अंतिम दिन तक महाभयंकर वेदना में और बराबर काम करता रहता है कि नहीं, पर अगले भव में बिल्कुल अकेला जा रहा है और ऐसी दुर्दशा में होगी कि हाथ पैर भी नहीं चलते होंगे, तेरा शरीर मिट्टी का लोंदा जैसा होगा, अभी उसमें आंख कान भी नहीं निकले होंगे, क्यों? और उसके लिए कुछ भी इंतजाम नहीं, कोई बात नहीं, इंतजाम तो कर ही नहीं सकते तो क्या करें, लेकिन उसका विकल्प तो होना चाहिए भले आदमी, क्यों? लेकिन उसमें तो विकल्प ही नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि तुझे अगले भव का भरोसा ही नहीं है, समझ लेना मेरा, और ये भगवान के प्रति अनंत अश्रद्धा है, सर्वतम समझ लेना, क्योंकि भगवान ने बताया है कि आत्मा अनादि अनंत है, ये किसी भव में से आया है और किसी भव में जाएगा, और तू उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तो भगवान की बात पर तेरे को श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब भगवान का अपमान है ये, कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसे थोड़ी वो किया जाता है, यही है और क्या, भगवान तुम क्या करेगा, भगवान का अपमान, भगवान का अपमान होने के लिए तो भगवान के अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय होना चाहिए, उनके तो आठ ही कर्म खत्म हो गए, उनका क्या होना है, इधर तेरी पर्याय में क्या हुआ है उसकी बात चल रही है, होता होगा निमित्त से कि नहीं होता होगा, हमें झगड़े में नहीं पड़ते हैं, इतना तो है कि तुझे उसमें कुछ नहीं करना है, उसे निमित्त को मिलाने में तुझे कुछ नहीं करना है, खत्म, तू तो बारात लेके जा रहा है ना, अपनी बारात की चिंता कर, कि बारात के स्वागत में गड़बड़ी ना हो जाए, इसकी चिंता वो लड़की वाले करेंगे, वो दूसरे के जिम्मे है, तू उसे माथा क्यों मारता है, क्यों, तुम अपनी चिंता कर, वे अपनी चिंता करेंगे, लेकिन जो उनकी करता है वे इनकी करता है, समय पे नहीं आए तो, समय पे नहीं आए तो, ये कहता उनकी व्यवस्था सही नहीं भाई, तो और कभी सोचा था कि माँ के पेट में आने के पहले कि मैं यहां से जा रहा हूं, माँ बाप तैयार नहीं हुए तो बैठे मेरे उसका इंतजाम तो करूं, देख तो लू कि तैयार है या नहीं है, पागल हो गया इतने बड़े काम में कुछ नहीं किया तो अब यहां क्यों विकल्प करना है, थोड़ी देर हो जाएगी, नहीं आएगी, बड़ा रात घंटे लेट आ जाएगी, पहले आ जाएगी, है कौन, दो मिठाई कम होंगी, क्या फर्क पड़ता है बेटा, तेरी तेरी शादी तो जिस लड़की से होने वो तो हो ही जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, वो तो आज से तेरी हो ही जाएगी, तुझे इनमें विकल्प मत कर, एक नमकीन कम होगा कि ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ता है, हर इज्जत का सवाल है, ये सारी इसकी इज्जत नमकीनों में ही घुस गई, इसमें काय की इज्जत, कैसी इज्जत, देखो प्रश्न, देखो बहुत अच्छा बढ़िया प्रश्न है, गुरुदेव का पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ता नहीं ज्यादा तो, मैं तो अपने आप ही बता देता हूं, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इस कोरे बौद्धिक व्यायाम में धर्म संबंधी क्या लाभ है, किनके प्रश्न है मालूम है, कि जिनको इन निमित्त का सही स्वरूप समझना नहीं है, और पहले जब समझाने लग गए ना तो इसके मन का नहीं निकला, तो उसको उसी चर्चा बंद कराना चाहता, क्या पहले खुद ही प्रश्न किया था और अब वो चर्चा बंद कराना चाहता है, तो ऐसी बात नहीं करता, अब ये बौद्धिक व्यायाम हो गई, हम वस्तु का स्वरूप समझा रहे और इसके लिए ये बौद्धिक व्यायाम हो गई, कहते ना इस कोरे बौद्धिक व्यायाम में धर्म संबंधी क्या लाभ है, छोड़ो ना इन व्यर्थ की बातों को, ये गुरुदेव के प्रचनों में खुद है, गुरुदेव ने खुद ही प्रश्न किया, हम वस्तु का स्वरूप समझा रहे और इसे व्यर्थ की बातें, और व्यर्थ का बकवाद बंद करो और छोड़ो ना इन बातों को, हम ये चर्चा बंद कर सकते, कौन सी बातें करें, देखो अरे भाई ये व्यर्थ की बातें नहीं है, इसकी यथार्थ समझ से ही धर्म होता है, देखो भगवान आत्मा शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वरूप स्वयं त्रिकाली ध्रुव है, यदि हम अपने उस ध्रुव आत्मा में अपने उपयोग को ले जावें, उस ओर अपनी दृष्टि करें तो यह विकार रूप नहीं होता किंतु निर्मल निर्विकार रूप परिणमित होता है, जो कि साक्षात धर्म है, परंतु वर्तमान दशा में हम पर का लक्ष्य करके परिणमित हो रहे हैं, इससे हमारी परिणति रागादी रूप हो रही है, इस समय हमारी स्वयं की योग्यता ही ऐसी है ना, दूसरे के माध्यम से ऐसी जो पर का लक्ष्य करके विकारी हो रही है, इसमें पर का या कर्म का कोई दोष नहीं है, फिर भी परलक्षी होने पर पर से उपयोग आरोप आता ही है। व्यवहार से ऐसा कहा भी जाता है कि पर ने विकार कराया अथवा कर्मोदय से विकार हुआ, परंतु यह सब उपचार का कथन है। और तेरी तत्समय की योग्यता ही ऐसी थी, तो वो कहता ठीक है फिर मेरी गलती है, मतलब कि हां तेरी गलती है, तो फिर मैं गलती मिटने के लिए क्या करूं, अब इसे तो करना है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बेटा कुछ नहीं करे, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम कुछ नहीं करे, क्यों मैं प्रयोजन कर रहा हूं और सामने वाला गालियां देने लगे तो मैं क्या करूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम कुछ नहीं करे, क्यों अथवा जो करता कर रहा है वो करता रहे, और तेरे से नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कर, मैं कहना ये सबसे बढ़िया रास्ता नहीं है कमल जी, बोलो यही है ना सबसे बढ़िया रास्ता। तो आज तक जितने भी जीव संसार से पार हुए वो इसी रास्ते से हुए ना, लेकिन इसको कुछ नहीं करे ये रास्ता इसकी समझ में नहीं आता, इसे तो कुछ करने वाला रास्ता चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दूं, गाली का जवाब गाली से दूं, क्यों है क्या नहीं, इसे कुछ करने को चाहिए कि हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, तुम कुछ करने रूप बताओ है? और भगवान कहते हैं कि तू कुछ नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता, या नहीं नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो चल ठीक है उसका तू ज्ञान कर, क्या वीतराग भाव से फिर ज्ञान कर कि और क्या तुझे काम चाहिए था ना, हमें बता दिए, ये कोई बात हुई, क्यों नहीं हुई बात। सिद्ध भगवान ऐसे ही करते हैं, जो सिद्ध भगवान को यहां गालियां देते हैं, महावीर भगवान को यहां गालियां देते हैं बैठे बैठे, तो भगवान महावीर सिलसिला में बैठे बैठे क्या करते हैं, क्यों उसे जान लेते। तो तुम भगवान का भगत है ना, तो जो भगवान ने किया वो रास्ता बता रहे थे, समझ में नहीं आता वो रास्ता है? कुछ नहीं करना है। वो रावण की कहानी आती ना कि रावण ने प्रस्ताव किया कि अष्टानिका लग गई हैं, अपन 8 दिन का युद्ध विराम कर देते हैं और फिर अपन 8 दिन बाद में फिर अपना युद्ध करेंगे। राम के पास रावण ने प्रस्ताव भेजा, रावण ने कहा बहुत अच्छी बात है, अपन भी पूजा पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे 8 दिन शांति से, और दोनों ने वो प्रस्ताव पास हो गया। अब उसने क्या किया कि चंद्रप्रू भगवान का चैत्यालय था उसके ही राजमहल में, तो उसने उसमें ध्यान लगाया, और काय के लिए लगाया, वो विपश्यना वगैरह में गया होगा, कोई ब्लड प्रेशर को दूर करने को लगाता है, ऐसे उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए ध्यान लगाया, कहते ना कि मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए। तो बहुरूपणी विद्या मानू किसे कहते हैं कि कोई उसका एक एक सिर काटे तो वे दो हो जाए, और दो काटे तो 4 हो जाए, जो भी नुकसान सामने वाला करे वहां डबल की व्यवस्था हो जाए, बताए ना बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए, अपन को भी हो सकती है, हो सकती है यहां क्यों, अपनी एक चप्पल खो जाती है वहां से, क्यों तो कभी कभी एक, कभी कभी लोग दो जोड़ी चप्पल ले आते हैं, हमको एक कदम भी पैदल है बिना चप्पल के नहीं चलना पड़ता है, आज तक भी नहीं चले, और वो पुरानी होती है एकदम नई आ जाती है, एक ही दो जोड़ी आ जाती है, बहुरूप की विद्या सिद्ध हो गई। वहां भी ऐसा ही कुछ होता होगा ना, वो विद्याधर करते होंगे, देवता करते होंगे, कैसे ही होता होगा, वो ये विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था। अभी सुग्रीव को और सब लोगों को ये पता लगा कि यदि इसको ये विद्या सिद्ध हो गई तो फिर इसे जीतना बहुत कठिन है. इसलिए इसके ध्यान में भजन करना चाहिए, कुछ उपद्रव करना चाहिए, जिससे इसके लिए बहुरूपी विद्या सिद्ध नहीं हो. लेकिन अभी बिना आज्ञा के तो नहीं कर सकते थे ना, तो श्री राम के पास गए. कैसा ब्राह्मण बहुरूपी विद्या सिद्ध कर रहा है, और यदि उसे सिद्ध हो गई तो फिर अपन उसे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अपन को कुछ उपद्रव करना चाहिए. कि नहीं भाई, अपना हो गया ना युद्ध विराम, दोनों की मंजूरी से हुआ है ना. कहा दोनों की मंजूरी से हुआ है, लेकिन उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी. वो कहना बहुरूपी विद्या सिद्ध हो जाएगी, लेकिन अपना तो हो गया ना युद्ध विराम, अब क्या कर सकते हैं अपन. नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना चाहिए. नहीं नहीं, कुछ नहीं करना. अब ये राम का कुछ नहीं करने वाला उत्तर उनको जितने वाला नहीं था, तो उनने कहा कि ये समझ लो कि फिर तुम्हें सीता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी. सोच लो, तो उनने कहा कि भाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन पहले तो अपन ने युद्ध विराम दोनों की मंजूरी से किया है ना, तो इसमें कुछ करने का सवाल क्या होता है. देखो, नैतिकता का तकाजा यह है कि इसके बारे में हमको कुछ सोचना नहीं है, कि तुम्हारी नैतिकता धरी रह जाएगी. ये युद्धों में नैतिकता नहीं चलती है, और तुम एक दिन इस बात को मानोगे, राम अवतार में नहीं मानोगे तो कृष्ण अवतार में मानोगे, कि छल से कपट से जैसे भी हो ये तो कुछ करना पड़ेगा. उन्होंने कहा मैंने कह दिया है ना, कुछ नहीं. क्या करने के, कुछ नहीं करो, कि बिना करे नहीं चलता है तो जानो देखो. समझिए ना, मना कर दिया. वे दौड़े दौड़े लक्ष्मण के पास गए कि चाचा जी, पापा जी तो बिल्कुल मना करते हैं कि कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई अपनी एक एक की हुलिया खड़ी खड़े हो जाएगी, क्या करना. मूर्ख तुम गए क्यों, गलत दुकान पे चले गए, वहां जाने की जरूरत ही क्या थी. उन्हें आत्मध्यान करने दो, अपन चलते हैं. और उनने जाकर बहुत उपद्रव किया, लेकिन रावण नहीं देगा, तो उन्होंने यहां तक किया कि मंदोदरी बनाई एक नकली मायावी, और उसकी चोटी पकड़कर और ऐसा लेके आकाश में उड़ते हुए और दिखाया रावण को, और कहा देख रावण, तेरी मंदोदरी को हम तेरी आंखों के सामने उठा के ले जा रहे हैं, तेरी भुजाओं में ताकत हो तो रोक ले. क्या? लेकिन राम ने नहीं चगा तो नहीं चगा, और उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई. मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो नहीं करने वाला काम किसी की समझ में नहीं आता, और देखने जानने वाला करने वाला काम भी किसी की समझ में नहीं आता. ये सारा जगत तो उठा पटक करने वाला है, और इसे तो कुछ करने को चाहिए. देखिए, अब वो कहने लगा इस बौद्धिक व्यायाम से क्या फायदा. इसको जो हम समझा रहे हैं ना तत्व, इसको ये बौद्धिक व्यायाम कह के हमारा अपमान करता है ना. ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है ना. ये करते क्या है, बस बैठ करके चार से मुमुक्षु बैठ गए आपस में, बस ऐसा बैठ गए, ये करता है कि नहीं है, करता नहीं है, ऐसा बौद्धिक व्यायाम करते हैं. धर्म मरम तो नहीं, कुछ ना नहीं है, वृद्धोपास भी करना नहीं है. क्यों? आत्मा का ध्यान भी करना नहीं है, कुछ नहाना धोना करने का कुछ करना नहीं है. क्यों? बस किन पे था ये यारो, किन पे था ये यारो, तुम पर, तुम कौन, किस खेत की मूली हो. ये आरोप गौतम स्वामी पर है, महावीर स्वामी पर है, कि समोसा में बैठ गया करते क्या थे बातों के अलावा, पर आत्मा फात्मा की बात नहीं करते थे. क्यों? इन्हें करना धरना तो कुछ है नहीं, फिर बातें करना है. क्यों? शायद ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो. तब गुरुदेव ने ये जवाब दिया कि भैया ये व्यर्थ की बातें नहीं है, असली धर्म यही है, और दूसरा नहीं अपने पढ़ लिया ना पूरा। इस प्रकार इन गाथाओं में मात्र इतना ही कहा गया है कि रागादि भावों की उत्पत्ति में परसंग ही मूल निमित्त कारण है। निमित्त कारणों में परसंग, अब वो परसंग किसी ने कराया थोड़ी है, तू ही ने किया, क्या हुआ कह दे, उसको हुआ भी कह सकता है और किया भी कह सकता है। देख अब इसी अर्थ का पोषक कलश काव्य लिखते हैं जो इस प्रकार है, वो तो अपन ने पढ़ ही लिया, वही कलश है ना। देखो अब इस कलश का भाव का स्पष्टीकरण कलश टीकाकार कलश टीका में लिखते हैं। इस वक्त मुझे एक बात याद ध्यान में आ रही, फिर भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बता देता हूं। मोटानी जी आप ध्यान से सुनना, ये बुद्धिपूर्वक का जो अर्थ है ना, गुरुदेव बताते थे कि जो हमारे ज्ञान में ज्ञात हो वो बुद्धिपूर्वक, और जो रागादि भाव हमारे ज्ञान में ज्ञात नहीं हो वे अबुद्धिपूर्वक, ठीक करते थे ना अंतिम 19वें बार प्रवचन में ज्यादा, ये भी कलश टीका के आधार पर करते थे। जयचंद जी छाबड़ा वगैरह ने ये अर्थ नहीं किया है, हमने जो सोच समझ के किया वो बुद्धिपूर्वक, और बिना सोचे समझे जो हो गया हो रहा है वो अबुद्धिपूर्वक, उनने ऐसा ही अर्थ किया। दादा ध्यान से सुनना, ऐसा कहके मैं क्या कहना चाहता हूं, कलश टीकाकार ने, संजीव तू भी सुनना, ऐसा क्यों किया, कलश टीकाकार की तो मजबूरी थी, क्योंकि परद्रव्य के संयोग रूप जो व्यवहार है, थोड़ी कठिन बात है, इसलिए मैंने पंडितों के नाम लिए हैं, आप समझ जाओ तो बढ़िया है, नहीं समझो तो ये पंडित लोग समझाते रहेंगे तुम्हें क्या, क्योंकि उनने परद्रव्य के संयोग में जो उपचरित असद्भूत नए थे, अनुपचरित उपचरित, उनको तो नए ही नहीं माना, और चार नए फिर उनने नए खड़े करे, उन्हें उपचरित जो नाम दिया, संयोग को माना नहीं, तो उन्हें दो असद्भूत नए दो खड़े करना थे। अब रागादिक के उनने खड़ा किया, तब रागादिक के दो भेद करने थे, उन्हें उपचरित अनुपचरित बनाना। अभय कुमार जी समझ में आ गया कि नहीं आया, उनकी वो एक मजबूरी थी, इस मजबूरी में उनने वो वहां अर्थ किया, उसे हम हर जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि सारा जगह जो कथन है वो इस व्याख्या के अनुसार नहीं है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम 19 बार के प्रवचन छप गए, वे लिखे गए, और वही चीजें आ गई, और हम बस यही समझने लग गए कि बुद्धिपूर्वक का असली अर्थ ये है, ये असली मसली नहीं है, ये तो सिर्फ पंचाध्यायी का है जो तरक्की कटोरी पर फिर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, क्योंकि वो गुरुदेव के प्रवचनों में आया है, जैसे मैंने बताया था ना कि वो चार प्रकार के जो व्यवहार नए हैं वो भी जो उनने बताए इसमें, और वो समय सार में नहीं घटित होते हैं, समय सार में क्लियर लिखा है क्या कि व्यवहार नयो भाषित जीवो देहो अवधि खलु एक को, तो दो द्रव्य के संयोग रूप हो गई नहीं तो फिर क्या होगा, वो मूल धारा नहीं है, तो हर जगह वो अर्थ ठोकना अच्छा नहीं है। ये ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं सब पंडितों को, और अब इनकी समझ में नहीं आए तो शांति जी से, संजीव गोदा से, अभय कुमार जी से, जो इस नए चक्र के विशेषज्ञ हैं, उन सब से समझ लेना, मेरे से भी समझोगे कोशिश करोगे तो मैं भी समझा दूंगा, लेकिन ये बात समझ लेना, क्योंकि हमारे वो हो गया, अब हमें रट लिया और फटाफट हर जगह वही लागू कर देते हैं, वो तो अब जहां परद्रव्य के संयोग का व्यवहार की बात चल रही शांति जी, अब वहां पर ये अर्थ कर दो तो वो फिर कितनी अटपटी बात हो जाएगी, क्योंकि वो तो उस व्यक्ति के अर्थ है जो व्यक्ति उसे मानता ही नहीं है, समझ जाएगा है? इतना कौन ध्यान रखता है, रखना चाहिए है? अच्छा चलो देखो, जब अब मैं पढ़ रहा हूं कलश टीका का, ये कलश टीका की वजह से मुझे ये ध्यान में आई, पहले कई दफे ध्यान में आई बात और मुझे आप लोगों को समझाने का भाव भी आया, लेकिन फिर वो भूल जाता हूं, काम में लग जाता हूं, اس لیے پھر جب آ گیا تو میں نے کہا جی بتا ہی دو, اس لیے میں نے بتا دیا. سنو بھاوارتھ اس پرکار ہے کہ دربھ کے پرنام کا کارن دو پرکار کا ہے. پرنام کا مانے پرنمن پریائے, ایک اپادان کارن اور دوسرا نمت کارن. اپادان کارن درب کے انتر گربھت ہے, میں اندر ہی میں ہوتا ہے, اپنے پرنام پریائے روپ پرنمن شکتی پر ایک کارن ہے, وہ تو درب کی شکتی ہے اور اسی درب میں ہوتی ہے ایسا نشچے ہے. یہ نشچے کا کتھن ہے. نمت کارن جو یہ اپادان کارن کی پرفاسا, نمت کارن جس درب کا سنیوگ پراپت ہونے سے ان درب اپنی پریائے روپ پرنمتا ہے, وہ پریائے تو جس درب کی ہے اس درب میں ہوتی ہے, ان درب گوچر نہیں ہوتی ایسا نشچے ہے. جیسے من ایسا نشچے ہے, نشچے نہیں نہیں ایسا نکی ہے, سمجھ گئے نا. جیسے مٹی گھٹ پریائے روپ پرنمتی ہے, اس کا اپادان کارن تو مٹی میں گھٹ روپ کے پرنمن کی شکتی ہے, اور نمت کارن باہی روپ کمار چکر دنڈ اتیادی. ویسے ہی جیو درب اشدھ پرنام موہ راگ دیش روپ پرنمتا ہے, اس کا اپادان کارن جیو میں انتر گربھت ویبھاو روپ اشدھ پرنمن شکتی. تسمن نمتم نمت کارن ہے پرسنگ یعنی درشن موہ چارتر موہ کرم روپ بند جو جیو کے پردیشوں میں ایک چھیتراپگاہ روپ پدگل درب کا پنڈ ہے اس کا ادے. یہ نمت ہے, یہ اس کا گیان کراتے ہیں کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے راگ روپ پرنمت ہوا تو وہ کہتے ہیں نمت تو اپادان دونوں ہی ہوں گے, تو درب کی شکتی اس سے تو وہ پرنمت ہوا, تو درب کی پریائے گت یوگتا ایسی شکتی. اور نمت کون ہوا تو تم اڑوس پڑوس میں کھوجتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک کوئی کرم ہوتا ہے جس لیے تم نے آج تک دیکھا نہیں ہے, صرف گومر سال میں دیکھا ہے, وہ اس کا ادے نمت ہوگا. اب جتنا سوکشم یہ یہاں اپادان ہے ابھے کمار جی, اس سے زیادہ سوکشم نمت ہے, کیونکہ اپادان تو ہمارے گیان میں آئی رہا, وہ پرنمن شکتی پرنمت ہو رہی نا, اب وہ کرم کا ادے تو نمت دھیان میں ہی نہیں آ رہا. اب ہم کیا ملائیں اور کیا جٹائیں اور کیا نہ ہٹائیں, تم باہر کو مان لیتا ہے اسے ہٹاؤ اسے جٹاؤ, ایسی بات کرنے لگتا ہے. کہاں گیا جو ادھارن ہو گیا نا. اب اتیادی ویسے ہی جیو درب اشدھ پرنام موہ روپ راگ دیش روپ پرنمتا ہے, اس کا اپادان کارن جیو درب میں انتر گربھت ویبھاو روپ اشدھ پرنمن شکتی. وہ اشدھ اپادان لکھا تھا نا اوپر. تسمن نمتم نمت کارن کون ہے پرسنگ, پرسنگ مانے درشن موہ چارتر موہ کرم روپ بندھ جو جیو کے پردیشوں میں ایک چھیتراپگاہ روپ ادگل درب کا پنڈ اس کا ادے. یہ نمت ہے. یدپی موہ کرم روپ ادگل پنڈ کا ادے اپنے درب کے ساتھ ویاپک روپ ہے, اپنے درب کے ساتھ مانے وہ پودگل کارمان بیگنا, جیو درب کے ساتھ ویاپک روپ نہیں ہے, تتھاپی موہ کرم کا ادے ہونے پر جیو درب اپنے ویبھاو پرنام سروپ پرنمتا ہے, ایسا ہی وستو کا سوبھاو ہے. کلش ٹیکا کے اتکتھن میں کار کی اتپتی میں اپادان کارن اور نمت کارن کی بھومکا کو اسپشٹ کیا گیا ہے. उक्त कलश के भाव को स्पष्ट करने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने दो छंदों की रचना की है, जिनमें मूल कलश में दिए गए सूर्यकांत मणि का उदाहरण तो दिया ही है, साथ में नदी के प्रवाह का उदाहरण भी दिया है. प्रथम छंद में सूर्यकांत मणि और दूसरे छंद में नदी के प्रवाह का उदाहरण दिया गया है. तो ये दोनों छंद हैं, इन्हें अपन कल पढ़ेंगे.